हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंध तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 19। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण या कापिता। श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेम तुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभुमतमिदम् तथाग्रहो न परः। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटीशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारि हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्व मृतुमेतदेव गोविन्द धामो धर्मादवेति। ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचोरं श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरम् चोराग्यगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीकृष्णश्यामं मनसा स्मरामि। मूकं कुरुतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। ग्रन्था श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आठवां स्कंध तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 19। आज भगवान के अत्यंत ही अद्भुत गुण का वर्णन करते हुए गजेंद्र भगवान की अत्यंत ही अद्भुत कृपा के विषय में हमें बता रहे हैं। कृपया मेरे साथ साथ श्लोक का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। गजेंद्र कहते हैं,
यम धर्म कामार्थ विमुक्त काम भजन्ते इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशो यपि देहमव्ययम् करोतु मेद प्रदयो विमोक्षणम्। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति काम भजन्ते इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशो रात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेद ब्रदयो विमोक्षणम्। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति काम भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशो रात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेद प्रदयो विमोक्षणम्।
गजेंद्र जी भगवान के अत्यंत ही दयालु और कृपालु स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपका स्वभाव बहुत ही अद्भुत है। आप इतने कृपालु हैं कि एक साधारण जीव आपकी कृपा का अनुमान भी नहीं लगा सकता। जो जो जीव जिस जिस इच्छा से आपका भजन करता है, वो जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, तो आप उसे वह वस्तु प्रदान कर देते हैं। वे कहते हैं, यम धर्म कामार्थ विमुक्ति काम। यहाँ पर जीवन के चार पुरुषार्थों के विषय में बता रहे हैं। पुरुष का अर्थ होता है एक जीव, और अर्थ का मतलब है जो जो वस्तु उसको चाहिए होती है। वास्तव में जीवन के चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो यहाँ गजेंद्र कहते हैं, यम धर्म कामार्थ विमुक्ति काम, जो धर्म कामी है, जो काम कामी है, जो अर्थ कामी है और जो मुक्ति कामी है, भजंत, यदि वो आपका भजन करते हैं, इष्टां, अपनी इच्छा, गति मापनुवंति, मतलब यहाँ पर बता रहे हैं गजेंद्र जी, जिन जिन व्यक्तियों को जिस जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, यदि वो आपकी शरण में आ जाता है, तो आप उसे प्रदान करते हैं, क्योंकि आप समर्थ हैं। तो जो लोग धर्म के कामी होते हैं, जो धर्म की कामना से आपकी शरण में आते हैं, आपका भजन करते हैं, यहाँ पर धर्म का मतलब क्या है? जैसे कुछ लोग स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, तो धर्म करते हैं, धर्म के कार्य करते हैं, तो उस धर्म की बात यहाँ पर की गई है। तो जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं, भगवान उनकी उस इच्छा को पूरा कर देते हैं। और दूसरा काम, काम का मतलब होता है इंद्रियों का भोग, है ना, वो व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। अब इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जिसके पास छोटा घर होता है, वो चाहता है मेरा बहुत ही सुंदर बड़ा सा घर हो। जिसके पास छोटी सी कार होती है या नहीं होती है, तो उसकी इच्छा होती है मेरे पास होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त भी भौतिक वस्तुएं, जैसे भी मतलब कोई भी वस्तुएं जो हम भौतिक संसार में खाना पीना ऐश करना घूमना फिरना अच्छे अच्छे ड्रेसेस ये वो, तो ये जो वस्तुएं हैं उनको बोला जाता है काम। तो जिसको जो वस्तु की आवश्यकता होती है, तो भगवान यदि भगवान की शरण में यदि आता है, तो भगवान उसे प्रदान करते हैं। हर जीव के मन में कोई न कोई इच्छा अवश्य रहती है, है ना, उसको कामना कहा जाता है। किसी को किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता होती है, तो कोई किसी भौतिक व्यक्ति की कामना करता है, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी व्यक्ति की कामना करता है या वस्तु की कामना करता है। तो भगवान समर्थ हैं, भगवान हर किसी को हर कोई वस्तु प्रदान कर सकते हैं।
और इसके बाद है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है धन। इस संसार में देखा गया है कि जीव जो है उसके पास जितना भी धन हो ना, वो कभी भी संतुष्ट नहीं रहता। ये धन एक ऐसी वस्तु है जो जितनी प्राप्त हो जाती है उसको कम ही लगती है। तो फिर जिसको धन की आवश्यकता होती है भगवान उसे धन प्रदान करते हैं, जिसको कोई भौतिक वस्तु की आवश्यकता होती है, इच्छा होती है भगवान उसे, और जिसको धर्म की कामना होती है तो भगवान उसे प्राप्त करते हैं। लेकिन ये सारी वस्तुएं जो हैं वो सब क्षणभंगुर हैं, वो सब इस भौतिक जगत तक ही आपका साथ देती हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं विमुक्ति कामा, जो मुक्ति की कामना करते हैं, यानी बाकी सारे जो जीव होते हैं जो धर्म अर्थ काम की इच्छा करते हैं वो ऐसा ही है जैसे कोई कैदी हो, कैद में पड़ा हुआ हो और वो चाहे कि इस कैद में मुझे सुविधाएं प्राप्त हो, इस कैद में मैं रहना तो मुझे स्वीकार है मगर यहाँ पर मुझे अच्छा खाने पीने की ना सुविधा होनी चाहिए, रहने के लिए अच्छा रूम होना चाहिए और हर वस्तु, जेल में जेल ओके है बट जेल में सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन थोड़ी सी बुद्धि जिसकी तीव्र हो जाती है और थोड़ी सी बुद्धि बढ़ जाती है, वो बहुत कम लोग होते हैं जो मुक्ति की कामना करते हैं। आज हम देखें यदि अपनी सोसाइटी में किसी से पूछें आपको क्या चाहिए तो शायद ही कोई होगा जो कहेगा मुझे मुक्ति चाहिए। हर कोई चाहेगा ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ना वो सोल्व हो जानी चाहिए। अगर मैं गरीब हूँ तो मैं अमीर होना चाहिए, अगर मैं मुझे मेरे संतान नहीं है तो मुझे पुत्र होना चाहिए, अगर मेरे पास ये शरीर रोगी है तो मुझे स्वस्थ शरीर मिलना चाहिए, अगर किसी का घर अच्छा नहीं है तो उसको घर मिलना चाहिए, अगर उसके बेटे की अच्छी कोई नौकरी जॉब नहीं लगी हुई है तो उसको जॉब मिल, किसी के पास क्या नहीं है, किसी के पास क्या नहीं। तो वो अगर आप उससे पूछो, भगवान भी आके खड़ा हो जाए ना, बेटा क्या चाहिए, तो उसको वही चीज याद होगी जो उसको अभी इस प्रेजेंट टाइम में नहीं होगी। उसके बाद उसको याद ही नहीं आएगा कि भगवान आए सामने तो मैं भगवान से मुक्ति प्राप्त करना चाहता, मैं इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त करके अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना चाहता। ये सब उसको याद ही नहीं आएगा क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी तीव्र है ही नहीं। तो जीव जो है वो भौतिक वस्तुओं के लिए भगवान के पास जाता है और भगवान समर्थ है। भगवान भागवतम कहती है कि जीव जिस जिस वस्तु के लिए भगवान के पास जाता है भगवान उसे वो अवश्य प्रदान करते। ध्रुव महाराज को ले लीजिए, भगवान के पास गए थे कि मुझे राज्य चाहिए, अपने पिताश्री, उनके पिताश्री और उनके पिताश्री महाराज मनु से भी बड़ा राज्य चाहिए और आकाश में ध्रुव तारा इस बात का प्रमाण है कि भगवान ने उसे एक प्लैनेट दे दिया, एक लोक दे दिया, ध्रुव लोक। हालांकि जब भगवान सामने प्रकट हुए थे तब ध्रुव ने ये कहा था कि मैं कितना बुद्धिहीन हूँ कि मैं कांच के टुकड़ों की इच्छा कर रहा था हीरे को छोड़कर, मुझे भौतिक वस्तुएं। भगवान को देखकर ध्रुव की सारी कामनाएं खत्म हो गई थी और कहने लगा स्वामी कृतार्थ हूँ हम वरम नवान से, अब तो मैं कृतार्थ हो गया हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन से बढ़कर और क्या हो सकता है। परंतु भगवान ने कहा नहीं ध्रुव, तुम भले कहो लेकिन तुम किस इच्छा से आए थे मेरी शरण में, यदि आज मैं तुम्हें नहीं दूंगा तो संसार यही कहेगा देखो भगवान के पास गया तो था लेकिन दिया तो कुछ नहीं ना, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। 36,000 वर्ष तुम भौतिक जगत में राज्य करोगे और उसके बाद तुम्हें एक पूरा प्लैनेट ध्रुव लोक प्रदान करूंगा। भागवतम तो हमें ये भी बताती है कि यदि कोई किसी भौतिक व्यक्ति की इच्छा करने की इच्छा से भी भगवान के पास जाते तो भगवान प्रदान करते हैं। हम देखते हैं भागवतम में एक व्यक्ति जिनका नाम था कर्दम ऋषि, एक ऋषि थे, वो भगवान की बहुत बहुत तपस्या करते थे और जब भगवान प्रसन्न होकर उसके सामने दर्शन देने आए तो पूछा कर्दम तुम्हें क्या चाहिए, तब कर्दम मुनि ने कहा मैं विवाह करना चाहता हूँ, मुझे एक पत्नी चाहिए जो भगवान की भक्त हो, क्योंकि मैं जब तपस्या करने बैठता हूँ तो बहुत सारे व्यवधान आते हैं मेरी तपस्या में और मुझे एक पत्नी चाहिए जो कि मेरा साथ दे भक्ति करने में। तब भगवान की कृपा से भगवान ने स्वयं कर्दम मुनि का विवाह करवाया। भगवान ने कहा परसों तुम्हारा मनु महाराज आएंगे अपनी पुत्री के साथ, अपनी पुत्री का रिश्ता लेकर, और फिर उनकी पुत्री देवहूति के साथ तुम विवाह करना, वो मेरी भक्त है, वो भक्ति में तुम्हारी सहायता करेगी। और देखा संसार ने भागवतम इस बात का प्रमाण है कि इतना सुंदर दाम्पत्य जीवन भगवान ने उसी समय कह दिया कि कर्दम तुम उससे विवाह करना और तुम्हारी और देवहूति की संतान के रूप में स्वयं मैं आऊंगा और अपनी माता को सांख्य योग का ज्ञान प्रदान करूंगा। उस समय भगवान ने पहले ही बता दिया था कि मैं आऊंगा। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जो जिस जिस भाव से भगवान के पास आता है भगवान उसे अवश्य प्रदान करते हैं। और कुछ यदि कुछ नहीं चाहते, मुक्ति चाहते, मुक्ति कामा, अब वो क्या चाहते हैं कि इस कैद में सुखी रहना नहीं चाहते हैं, परंतु इस कैद से छूटना चाहते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है कि उन्हें पता नहीं होता है कि कैद से छूट कर जाना कैसे। अब देखिए, अगर कोई कैद में है और वो उसको बोलो खोल दो, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मुझे खोल दो, और उसको खोल दिया जाए, लेकिन उसे पता ही नहीं कि जाए किधर, तो फिर उसका कैद में रहना या बगैर कैद के रहना तो कोई उसका अर्थ ही नहीं है। वास्तविक मुक्ति ये है कि तुम अपने प्रेमी से जाकर मिलो, जहाँ पर तुम्हारे प्रेमी है, जहाँ पर तुम रहते थे, तुम्हारा अपना घर, जहाँ पर तुमसे प्यार करने वाले रहते हैं, वहां पर तब तुम जाते हो, तभी उसका मतलब है मुक्ति। तो कुछ लोग ये नहीं जानते कि हमें कहाँ जाना है, वो ब्रह्म ज्योति में समाना चाहते हैं या फिर वैकुंठ में कहीं जाना चाहते हैं। तो भगवान उसकी हर जीव की हर इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ है। गजेंद्र जी कहते हैं, यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजंत इष्टाम। इष्टा मतलब जिसकी जो इच्छा होती है, जिससे जो जीव जिस लक्ष्य को मन में रखकर आपकी भक्ति करता है, गतिम आपनुवंती, वही गंतव्य वो प्राप्त करता है, क्योंकि आप समर्थ हैं, आप दे सकते हैं। वास्तव में तो भक्तों केवल भगवान ही ऐसे हैं जो हमारी हर एक इच्छित वस्तु को प्रदान कर सकते हैं। बाकी देवी देवता जो हैं, वो हमारी हर इच्छित वस्तु को प्रदान नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि जो देवी देवताओं के पास जाते हैं ना, तो जब मांगते हैं तो वो भी डर रहे होते मन में, कहीं ऐसा कुछ ना मांगने जो मैं दे नहीं सकता हूँ। उसके हृदय में एक तरह का डर होता है। और फिर अगर वो कोई छोटी चीज मांग लेता है तब वो सुकून का सांस लेते हैं, शुक्र यही मांग ली, ये तो छोटा सा है, मैं दे देता हूँ। बाकी उनके मन में ऐसा नहीं होता कि ये मुझसे लेने आया तो मैं भर। लेकिन भगवान के लिए यहाँ पर कहा जाता है, किंचा शिशुरात्यपि देहम अव्यय। अरे भगवान वो वस्तु तो प्रदान कर ही देते हैं जिसकी आप इच्छा करते हो, लेकिन यदि आपको मांगना ना आए, यदि आपको इच्छा करना नहीं आए, यानी कि जब भगवान की कोई भक्ति करता है वो जो वस्तु की इच्छा करता है वो तो भगवान दे देते हैं, परंतु जिस वस्तु की कामना नहीं करता वो ये सोचता है कि ये तो बहुत दुष्प्राप्य है, दुष्प्राप्य या बहुत कठिन समझकर जिसको वो नहीं मांगता ना, भगवान तो वो भी प्रदान कर देते हैं। अर्थात रात्यपि देहम अव्ययम, वो प्रदान कर देते हैं देह, उस शरीर को जो अव्यय है, जो आध्यात्मिक, अर्थात जीव का वास्तविक स्वरूप, जीव का जो नित्य स्वरूप है वो भगवान प्रदान कर देते हैं। एक जीव को अपना पार्षद बना देते हैं, जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा देते हैं। क्या कोई देवता आपको ये दे सकता है? आज जब देवता भी आपको ये चीजें प्रदान नहीं कर सकते, लेकिन तो फिर इस भौतिक जगत के साधारण मानवों का क्या कहना? वो तो कुछ भी प्रदान नहीं कर सकते। आज इस संसार में जो कोई व्यक्ति आपको कुछ दे रहा है तो उसकी बदली में डबल ट्रिपल आपसे मांग रहा है। हम नहीं देखते हैं कि भौतिक जगत में अगर कोई हमें देता है, जैसे अगर संसार में कोई किसी की सेवा करता है तो क्या फ्राइडे से लेकर मंडे तक सेवा करना पड़ता है ना? सिर्फ एक संडे की छुट्टी होती है और बीच में यदि कोई छुट्टी मार ली तो फिर आपकी सैलरी में से वो कटौती हो जाएगी, है ना? अगर तुमने दो छुट्टियां ज्यादा कर दी तो फिर उसमें से भी सैलरी में, ये जितनी आप सेवा करोगे उसके बराबर ही आपको मिलेगा, बल्कि उससे बहुत कम आपको मिलेगा। और ये तो है ही है कि बगैर आपके समर्पण के आपको कोई कुछ नहीं देता, बगैर आपके सेवा के आपसे चूस लिया जाता है संसार में, जो भी हो चाहे संसार में कोई भी हो, वो आपसे यही उपेक्षा करता है, जितना मैंने तुम्हें दिया है उससे तीन गुना ज्यादा मुझे मिलना चाहिए। केवल भगवान ही एक ऐसे हैं जो केवल प्रेम के, केवल स्मरण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मांगते जी। उसे भगवान कहते हैं, तुम्हें बताओ मैं मुझे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भगवान कहते तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम, तुम अपनी बुद्धि से नहीं प्राप्त कर सकोगे, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, खाली प्रेम से मुझे मेरा भजन करो, मैं तुम्हें ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ति ते, मैं तुम्हें वो बुद्धि प्रदान कर दूंगा जिससे मैं साक्षात तुम्हें मिल जाऊंगा। और जो क्या कोई संसार में खुद को साक्षात यानी भगवान जिसका हो गया, भगवान के सारे वैभव उसके हो गए, भगवान का सारा ऐश्वर्य उसका हो गया, तो फिर भगवान उसे वो बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे कि वो साक्षात भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बदली में आपसे कुछ नहीं चाहते, किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं करते। भगवान को भला हम क्या दे सकते हैं, जो कुछ हमारे पास है वो उसी का तो है। और भगवान यदि आपसे प्रेम मांगते भी है ना, तो भगवान को प्रेम की भी आवश्यकता नहीं है, भगवान पूर्ण है। यदि वो कुछ मांग रहे हैं तो केवल तुम्हारे हित के लिए, केवल जीव के हित के लिए, क्योंकि जीव तब तक तड़पता रहेगा जब तक कि वो भगवान से प्रेम नहीं करता। जीव का हित इसी में है, जीव का कल्याण इसी में है कि वो अपने प्रेम और अपने समर्पण को भगवान को सौंप दे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, खाली अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परियुपासते, तुम खाली अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, मुझे याद रखो, क्योंकि जब तुम मुझे भूल जाओगे तब तुम दुखी होगे, तब तुम भौतिक वस्तुओं के लिए दर दर जाकर भीख मांगते फिरोगे, लेकिन यदि तुम मेरा चिंतन करोगे तो योग क्षेमम वहाम्यम, तुम्हें जिस वस्तु की आवश्यकता है वो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, और जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी सुरक्षा मैं करूंगा। इसलिए तुम खाली मुझे स्मरण करो, मेरा नाम रटो। इस संसार में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा जीव, हम संसार के लोगों पर कितना निर्भर है। कोई जीव के पास अगर कोई दोस्त नहीं होता है, कोई भाई नहीं होता है, तो उसको कितना दुख होता है कि मेरा कोई नहीं है। और जिसके पास होते हैं तो उसको बहुत एक अहंकार होता है कि कितने बड़े बड़े रिश्तेदार हैं मेरे, कितने बड़े मतलब दोस्त हैं इत्यादि। लेकिन वो आपका कितना काम आएंगे, कब तक आपका साथ दे सकते हैं। इस संसार में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे केवल आप प्रेम करो, बोलो हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा नाम लेता हूँ, तुम मुझे हर महीने 1,00,000 रुपए देते रहो, ऐसा कोई होगा व्यक्ति नहीं। भगवान ऐसे हैं कि भगवान कहते हैं तुम मेरे नाम का स्मरण करते रहो, बाकी तुम्हें जिस वस्तु की आवश्यकता है वो मैं तुम्हें वो तुम्हारी हर एक आवश्यकता को मैं पूरा करूंगा। इसलिए जीव को वास्तव में कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। कोई देवता भी आपकी हर इच्छा को पूरा नहीं कर सकता है, मनुष्यों की तो क्या बात की जाए। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम आजकल मनुष्य पर निर्भर हैं। बस जब भी कोई प्रॉब्लम होती है जब तो उन मनुष्यों की ओर ही हमारा ध्यान जाता है, भगवान की ओर ध्यान नहीं जाता। कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं, कृष्ण किसी भी तरह से हमारी सहायता कर सकते हैं, हमें कृष्ण की ओर ही सहायता के लिए देखना चाहिए। भगवान तो पात्रता भी नहीं देखते। कभी भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम इतने गरीब हो या तुम दरिद्र हो या तुम तो है ना अच्छे नहीं हो, ऐसे अपराधी हो। बड़े बड़े अपराधियों को भगवान ने कहा कि अपिचे सु दुराचारी भजत तुम अनन्य भाग, अगर तुम बड़े से बड़े अपराधी हो तो भी तुम अगर मेरी भक्ति करते हो तो मैं तुम्हें महात्मा का दर्जा दे देता हूँ। तो फिर इस संसार में यदि हम देखें तो कोई भिखारी होगा तो उसको कोई है ना ऐसे देगा कि भाई हाँ ठीक है भिखारी, उसको 1,000 रुपए दे दो, नहीं उसको भिखारी की हैसियत के हिसाब से देगा, है ना, 1 रुपया देगा, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए देगा। लेकिन भगवान आपकी हैसियत नहीं, भगवान आपका समर्पण देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि तुम किस स्टेज पर हो, भगवान ये देखते हैं कि तुम कितना प्रेम दे रहे हो। और भगवान के पास अपार वस्तुएं, भगवान की धन की, भगवान की कृपा की कोई सीमा नहीं है। इसलिए यहाँ पर भगवान को कहा गया करो तुम्हें द ब्रदयो का मतलब है अदब ब्रदयो, मतलब अत्यंत ही दयालु भगवान, अत्यधिक दयालु भगवान, की कृपा की कोई सीमा नहीं है। भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, हमेशा सदैव प्रतीक्षा में रहते हैं कि कोई भक्त हमसे कुछ लेने आए, और जब देने लगते हैं तो उनकी तृप्ति ही नहीं होती है हर उस वस्तु को जो कि तुम्हारे लिए। और यहाँ पर ये बात भी देखनी चाहिए कि देवता के पास यदि हम जाएंगे तो कभी भी देवता ये नहीं सोचेंगे कि आपने मुझसे ये मांगा है तो ये आपके कल्याण के लिए सही है या नहीं है। लेकिन भगवान तो इतने दयालु हैं, इतने सुहृद हैं कि अगर कोई आपकी कल्याण की वस्तु नहीं होगी तो वो आपको नहीं। जैसे संसार में भी देखें हम कि अगर कोई जाता है मार्केट में कुछ खरीदने के लिए, पैसे दे रहा है तो उसकी बदली में जहर भी ले रहा है ना, तो वो जहर बेचने वाला दे देगा, है ना, वो ले ले भाई ठीक है जहर दो तो दे देगा। ये नहीं सोचेगा कि अगर जहर इसने खा लिया तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी तरह देवता कभी भी नहीं सोचते कि जो मैं वस्तु दे रहा हूं वो आपके लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। परंतु भगवान आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, सबसे बड़े सुहृद हैं, आपको हर एक इच्छित वस्तु प्रदान करते हैं, परंतु साथ साथ में ये भी देखते हैं कि कहीं वो आपके लिए हानिकारक ना हो। अर्थात अगर किसी को मांगना नहीं आता तो भी वो खुश होकर भगवान जो है वो उसको वो सब प्रदान कर देते हैं जो कि उसके मन में कभी इच्छा आई थी। भगवान इतने समर्थ हैं, वो आपके हृदय में रहते हैं, और जो जो वस्तु आप नहीं समझ, नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं कह पा रहे, भगवान को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान तो हृदय से जान देते हैं कि मेरे बच्चे की, मेरे भक्त की ये आवश्यकता है, ये इच्छा है, तो भगवान वहीं से प्राप्त उसको प्रदान कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर गजेंद्र जी कह रहे हैं कि भले ही आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हर एक वस्तु को प्राप्त करा सकते हो, और अन्य वस्तुओं की क्या बात की जाए, आप तो अव्यय देह प्रदान कर सकते हो, मुक्ति प्रदान कर सकते हो, तो मगर मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। करो तुम्हें, मुझे क्या चाहिए, अदब हृदय, हे दयालु, हे कृपालु, अब बहुत कृपावान है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो विमोक्षणम, मुझे तो खाली खाली मुक्ति चाहिए, विमोक्ष। इसने ये नहीं कहा है कि मुझे मोक्ष चाहिए, है ना, मोक्ष में और विमोक्ष में बहुत फर्क है। मोक्ष का मतलब होता है कि मुझे, जैसे कोई बंधा हुआ व्यक्ति हो और वो कहे कि मुझे खोल दो, बस उसको खोल दिया तो कोई अक्लमंदी की बात उसने नहीं की, खोल दिया, लेकिन उसको उसका वास्तविक स्वरूप प्रदान हो जाए, है ना, जब जो उसका वास्तविक घर है, जहां पर वो रहता है, जहां पर उसके प्रेमी रहते हैं, जहां पर उसका प्यार करने वाला सारा समाज है, वहां यदि वो जाए तभी उसकी वास्तविक विमोक्षण का मतलब है कि गजेंद्र ना केवल इस भौत ये प्रेजेंट जो तक उसको कष्ट है, वर्तमान संकट है, ना केवल उससे उभरना चाहता है, परंतु भौतिक जगत से उभर कर भगवान को प्राप्त करना चाहता है। वास्तव में ये मांगना आया, इस तरह से मांगा जाता है भगवान से, भगवान मुझे तुम आप तो दे सकते हो, धर्म दे सकते हो, अर्थ दे सकते हो, काम दे सकते हो, परंतु मुझे और कुछ नहीं, मुझे आप चाहिए हो, मैं आपका बनना चाहता हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, इसलिए मुझे इस भौतिकवादी जीवन शैली से मुक्ति का आशीर्वाद दीजिए। अनुवाद देखिए, भगवान की पूजा करने पर जो लोग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों में रुचि रखते हैं, वे उनसे अपनी इच्छा अनुसार इन्हें प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर अन्य आशीर्वादों के विषय में क्या कहा जा सकता है। कभी कभी भगवान ऐसे महत्व आकांक्षी पूजकों को आध्यात्मिक शरीर प्रदान करते हैं, जो भगवान असीम कृपालु हैं, वे मुझे वर्तमान संकट से तथा भौतिकतावादी जीवन शैली से मुक्ति का आशीर्वाद दीजिए। श्रील प्रभुपाद अत्यंत ही सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो।
श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इस भौतिक जगत में कुछ लोग अकामी होते हैं, कुछ सकामी होते हैं तथा कुछ धर्म, अर्थ, काम एवं अंततः मोक्ष की कामना करते हैं। और शास्त्र कहता है अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। श्रीमद् भागवतम 2.3.10। यह संस्तुति की गई है कि मनुष्य की चाहे जो भी स्थिति हो, चाहे वह भौतिक लाभ चाहता हो या ना चाहता हो या अंततः मोक्ष चाहता हो, अकाम मतलब कोई कामना ना हो जिसके अंदर, सर्व काम हुआ यानी जिसके अंदर अनेक अनेक कामना हो, वह मोक्ष कामी या फिर मोक्ष की कामना हो, तीव्रेण भक्ति योगेन तो भी उसको क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करके यजेत पुरुषम परम, उस परम पुरुष भगवान को की शरण में जाना चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि चाहे वह भौतिक लाभ चाहता हो या ना चाहता हो या अंततः मोक्ष चाहता हो, उसे भगवान की श्रद्धा पूर्वक भक्ति करनी चाहिए, तभी उसे मनवांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तं सतैव भजामि, हम भगवान आदान प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि एक सामान्य जीव भी जो चाहता है उसे भगवान प्रदान कर देते हैं। कृष्ण हर एक के हृदय में स्थित रहते हैं और जीव को मनवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। ये अर्जुन भगवान सबों के हृदय में आसीन है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर आरूढ़ सारे जीवों को घुमाते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18.61। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान हर एक को अपनी महत्व आकांक्षा की पूर्ति का अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि ध्रुव महाराज जैसे भक्त भी अपने पिता के साम्राज्य से अधिक बड़े साम्राज्य का वर चाहते थे। यद्यपि उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ किंतु उन्हें साम्राज्य भी प्राप्त हुआ, क्योंकि जो भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है उसे भगवान निराश नहीं करते। क्योंकि गजेंद्र ने वर्तमान संकट से, या यूं कहिए कि भौतिकतावादी जीवन के वर्तमान संकट से मुक्त होने के लिए शरण ग्रहण की थी, तो भगवान उसकी इच्छा पूर्ति क्यों न करते। श्रील प्रभुपाद की वास्तव में भक्तों, ये जो भौतिक वस्तुओं की कामना है ना, वही जीव की सबसे बड़ा रोग है। जीव के हृदय की सबसे बड़ी गंदगी यही है, क्योंकि जब तक जीव भौतिक वस्तुओं की इच्छा करता रहता है वो वास्तविक भगवान के प्रेम की इच्छा नहीं कर पाता है। इसे भगवान इतने कृपालु हैं कि जीव के हृदय से या भौतिक इच्छाओं की गंदगी को खत्म करते हैं। भगवान बताते हैं कि जो भौतिक कामना है वो विद्येनम इह वैरिणम, अर्जुन को कहते हैं इसको तुम सबसे बड़ी अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानो। तो भगवान की शरण में जब जीव जाता है और भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, भगवान की कथाओं को श्रवण करता है, तो भगवान उसके हृदय से ये भौतिक इच्छाओं की लालसा खत्म ही कर देते हैं। भले ही खत्म हो जाती है लालसा, लेकिन भगवान को याद रहता है कि नहीं, मेरे बच्चे के अंदर ये इच्छा थी, तो अभी भगवान उसकी इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। और भगवान उसको उसकी इच्छा, उसकी स्थिति और उसकी कामना से भी अधिक प्रदान करते हैं। भगवान उसे उसका वास्तविक स्वरूप प्रदान करते हैं, भगवान उसे अपना पार्षद बना देते हैं। और गजेंद्र यही चाहता है कि भगवान इस भौतिक देह के इस कष्ट से और भौतिक जगत के इस कष्ट से छूट कर मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, कृपया मुझे संरक्षण प्रदान कीजिए। एक बार शुरू से पढ़ेंगे, कृपया साथ दीजिएगा। श्री बादरायणी रुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोरिधि जजाप परमं जाप्यं प्राक्जन्मन्यनुशिक्षितं। श्री गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत्त एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परीक्षाया धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यैदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्धि स्वयं भुवम् यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमिति शुकृष्णशो कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासी गहनं गभीरं यस्तस्य पारेभिविराजते विभो न यस्य देवा ऋषयः परं विदु जन्तु पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् विमोक्तसङ्गा मुनय सुसादवा चरन्त्यलोक व्रतमाव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृद समे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोका ययसंभवायय स्वमायया तान् यनुकालमिच्छति तस्मै नमः परीक्षाय ब्रह्मणेनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असदाच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायात् भूतकारणाय सर्वांगमाम्नाय महार्णवाय नमो पवरिकाय परायणाय गुणारणिच्छन् नचिदुष्मपाय तत्क्षोभ विस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृत् मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्त गृहवित्त जनेषु सत्तये दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभि स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्ते इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेदा हृदयो विमोक्ष्यम्।
हरे कृष्ण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।